नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर वहां गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अब्दुल्ला और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री मोदी अम्मान में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इथियोपिया जाएंगे। वे इथियोपिया में संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान पहुंचेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। कल नई दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के सांसदों ने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए माफी मांगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में यह मुद्दा उठाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष दोनों लोकसभा राज्यसभा में देशवासियों से माफी मांगना चाहिए।
राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर हंगामा जारी है। कार्यवाही शुरू होते ही सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी माफी मांगे। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि रैली के दौरान मंच से किसी ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं की। लोकसभा में 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा फिर से शुरू हो गई। इसमें सदन से 1,32,000 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें 41,455 करोड़ रुपए से अधिक के शुद्ध नकद व्यय के प्रस्ताव भी शामिल हैं। उर्वरक सब्सिडी पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय भी शामिल है। विधेयक में मंत्रालयों और विभागों की बचत से पूरे किए जाने वाले 90,812 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव है। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति जेपीसी को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श पर जोर दिया है। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक शांति प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण हेतु परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर फिर से चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए एआई अन्ना डीएमके के डॉक्टर एम थंबीदुरई ने कहा कि शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूती करता है और पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने आज केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी की उपस्थिति में सरकार को 109 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश भुगतान वर्ष 2023-24 की तुलना में 100% अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा उस संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री का नाम कुलाधिपति के पद पर प्रस्तावित था। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहीद बुद्धिजीवी दिवस पर कई प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किए। इसमें 14 दिसंबर को 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की सेना के सहयोगियों की निंदा की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।